Om Shanti. आज की मुरली कानों में है, गूंज रही है। है कोई बात याद? सतयुग का आधार वर्तमान। वैसे तो हर भविष्य का आधार वर्तमान ही होता है। पहली सुंदर पॉइंट, जो जितना समय अकाल तख्त पर विराजमान वो उतना ही समय पहले बाप के दिल पर विराजमान। बाप के दिल पर विराजमान का क्या अर्थ है? हम बाबा के दिल पर हैं, इसका अर्थ बोलो। बाबा हमसे बहुत खुश हैं। आपका कोई बच्चा आपके दिल पर चढ़ा हुआ, इसका अर्थ क्या होगा? हैं? प्यार नहीं, आप उससे बहुत राजी हैं। उसके ऐसे कर्म हैं कि आप उससे बहुत राजी हैं। हम भगवान के दिल पर हैं, भगवान राजी है, और वो राजी होगा तो क्या कर देगा? सोचना है सबको, सुनो नहीं, माताओं से पूछ रहे हैं। भगवान राजी हो जाए तो क्या कर देगा? पता नहीं, सब कुछ दे देगा। और क्या क्या दे देगा सब कुछ में? ठहरो, मैं माताओं से पूछ रहा हूँ पहले। क्या दे देगा? सुख शांति दे देगा। और क्या? उससे भी बड़ी चीज, भक्ति में गायन है, भगवान राजी हुआ, कहा बोलो क्या वरदान चाहिए। पहले मिलेंगे वरदान, छप्पर फाड़ के बाद में देगा। छप्पर है क्या आजकल माताओं के घरों में? छप्परों का जमाना पूरा हो गया। भगवान को राजी करना है तो अकाल तख्त पर बैठो, अर्थात मैं आत्मा अकाल तख्त पर विराजमान हूँ। ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर ले। ये तख्त है हमारा, ये सिंहासन भी है हमारा मस्तक, मैं राजा इस पर विराजमान हूँ। ये प्रैक्टिस करेंगे तो सतयुग में तख्त पर बैठने की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। दोनों प्रैक्टिस साथ साथ चलेंगी। और बोलो, तन मन धन को कितना सेवा में लगाया है? बहुत इम्पोर्टेंट बात थी, सबसे गुई ये बात यही थी। तन आदि से और अंत तक, जब से ब्राह्मण बने और जब तक रहे, कितना लगाया? ये तो सबका अपना अपना चार्ट है ही। मन बोलो, मन के बारे में बोलो। मन, कुछ बात बाबा ने बताई, कुछ और जोड़ेंगे। मन कितना मनमना भव रहा, सबसे बड़ी बात। मनसा सेवा कितनी की, और मनसा सेवा का सिंपल स्वरूप बताया, शुभ भावना और शुभ कामनाएं। कामनाएं, कामना माना इच्छा। अपने लिए कितनी शुभ इच्छा रही, विचारणीय बात है। अपने लिए कितना शुभ सोचा, सोचते हैं हमसे तो पुरुषार्थ होता ही नहीं, योग लगता ही नहीं, मन बहुत भटकता है। ये अपने लिए शुभ सोचा या गड़बड़ हो गई? बड़ा आराम से सोचते हैं, मन बहुत भटकता है। जैसे बहुत अच्छा काम सुना रहे हो, शुभ सोचो अपने लिए। क्या सोचेंगे शुभ? बोलो, सबको बोलना है। उधर वाले बोल सकते हैं, पीछे वाले। अपने लिए शुभ क्या सोचेंगे? मैं आत्मा कल्प कल्प की विजय रतन हूँ, मुझे बाबा से सब कुछ लेना है, मुश्किल से तो भगवान मिला है। अब मैंने जो बोला उसको आगे भरो, मुश्किल से तो भगवान मिला है, अब सारा ले लेंगे। और सुंदर शब्द बता देता हूँ, उसको खाली करके भेजेंगे। बहुत माल है ना उसके पास, किसके लिए है वो? हमारे लिए है, उसके काम थोड़ा ही आएगा। उसको तो परम धाम में जाकर विश्राम करना है। उसका सारा खजाना हमारे लिए है, सब ले लेंगे। ये है अपने लिए शुभकामना। सभी अच्छी तरह विचार करें, हम अपने लिए शुभकामना रखते हैं या नहीं। मैं आगे बोलो, मैं आगे बोलो, बाप के दिल पर बैठकर ही दिखाऊंगी, जो काम कठिन है उसे मैं सरल करके दिखाऊंगा। शुभकामना है ना अपने लिए, ये मैं नहीं है, ये श्रेष्ठ कामना है, स्वमान है ये। तो सभी अपने लिए शुभकामना रखें और दूसरों के लिए शुभ भावना, दो बांट ले सिंपली ऐसे, दूसरों के लिए शुभ भावना। अब इसके लिए बाबा ने एक शब्द बोला, ये हद की रहती है या बेहद की, अपनों के लिए ही रहती है या सबके लिए। अपनों के लिए तो अच्छी भावनाएं सबके ही पास है, कोई ऐसा मनुष्य नहीं जो अपनों के लिए अच्छा न सोचे, बहुत कम है जो ऐसा वैसा सोचते हैं। लेकिन सारे संसार के लिए सुंदर भावना हो, सबका कल्याण हो। देखो हमारे भारत में जो पहले पहले मंत्र है ना, जो प्राय उच्चारण किए जाते हैं, सबको सुख मिले, सर्वे सर्वे भवन्तु सुखिने, बहुत है, मुझे तो भूल गए, चार है ना, सबको बहुत सुख मिले। आगे बोलो जिनको याद है। सबका भय समाप्त हो, सबको शांति मिले, अब ये हमारी शुभ भावनाएं हैं। सबका जीवन निर्विघ्न हो जाए, देखो हमारे धर्मों में भी ये बातें आ गई, ताकि मनो शुभ भावना रखे, परंतु हमारी शुभ भावनाओं का बड़ा महत्व है। क्यों? कौन है हम सब? आज की मुरली में था, हम हैं पूर्वज हैं, आधार मूर्त हैं, इस कल्प वृक्ष की कलम हैं, मास्टर सर्वशक्तिवान हैं। लेकिन एक चीज और, इष्ट देवियां इष्ट देव हैं। इष्ट देव देवियां किसी के लिए शुभ भावनाएं रख लें, कोई बीमार उनकी मूर्ति के पास पहुंचे पीड़ित, और देवी मुख से बोल दे, जाओ सात दिन में ठीक हो जाओगे, कैसे लौटेगा भक्त? डांस करते हुए उछलते हुए जाएगा, देवी ने वरदान दे दिया है, बस अब ठीक। और यहाँ की देवियां क्या हाल है यहाँ की देवियों का? शुभ भावनाएं रखने से सबका कल्याण होगा। तो जो चीज भक्ति में चली आ रही है, बात वही है, उसको यदि महान आत्माएं करें तो उनके वाइब्रेशंस जग का कल्याण करेंगे। एक पंडित सोच रहा है रोज सबको सुख मिले, वही सुखी नहीं है बेचारा, या उसके पास प्योरिटी नहीं, उसके पास शक्तियां नहीं, तो उसकी सुख की भावना थोड़ा सा काम करेंगी, करेंगी जरूर, लेकिन जिनके पास शक्तियां हैं, जो महान हैं, जो कल्पवृक्ष से जुड़े हुए हैं, वो यदि सच्चे मन से सोचेंगे सब सुखी हो जाएं, तो बहुत बड़ा प्रभाव जाएगा। तो हम सभी आज की मुरली के पहले स्वमान को ले लें, अब हम कल्प वृक्ष की कलम हैं, बीज और कलम। कलम जानते हैं ना, आजकल हंसी मजाक बहुत आती रहती है। राहुल गांधी किसी किसान के पास पहुंचा, गन्ने के खेत देखे, कहा बड़ा मोटा मोटा घास लगाया, बीज कहीं भी देश से लाए हो क्या? कि नहीं सर, ये गन्ना है। अच्छा, गुड़ कब लगेगा इस पे? मजाक करते हैं लोग उसकी बहुत। तो कलम और बीज क्या अंतर है, मैं भी पूछ लूं जरा आज। हैं? काट के जो लगा देते हैं उसको कलम कहते हैं, और बीज तो सब जानते ही हैं, गेहूं का बीज गेहूं का दाना, चने का बीज चने का दाना, वो तो सबको पता है ना, कलम। कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जिनका बीज नहीं बोया जाता, कलम भी काट के जमीन में गाड़ दी वो पकड़ लेती है। गुलाब आदि भी ऐसे ही होते हैं, आम की भी लगा देते हैं, गन्ने की तो लगती है। हम कौन हैं? कल्पवृक्ष की कलम। अब बाबा के शब्द, तुम कल्पवृक्ष की कलम भी हो, माने बीज हो गए ना, मास्टर बीज हो, कल्पवृक्ष की जड़ें हो। ये बाबा हमें याद दिलाते हैं कि तुम अपने को पहचानो, तुम जो सोच रहे हो वो कहाँ तक वार कर रहा है, तुम जो कर्म कर रहे हो उसका इफेक्ट कहाँ तक जा रहा है। मनुष्य कर्म करेगा उसको फल मिलेगा, हमारे कर्म कुछ और भी करेंगे। अब पहली बात जो बहुत गुह्य है, तुम इस कल्प वृक्ष के पूर्वज हो, सभी धर्मों की आत्माओं के पूर्वज हो। ये बहुत ही सुंदर बात है और रहस्य को लिए हुए है। तुम्हारे हर पुण्य कर्म का बल सभी धर्मों की आत्माओं को मिलता है। देखो हमारे पुण्य कितनी जबरदस्त चीज हो गई। दुनिया में कोई पुण्य करे उसको उतना ही फल मिल जाएगा, और हमारे पुण्य सारी सृष्टि तक वार करेंगे, पहुंचेंगे, उनका बल सभी धर्मों की आत्माओं को मिलेगा, इसलिए उसका फल भी तुम्हें पदम गुना मिलता है। क्योंकि पद्मों अरबों लोगों को बल मिला तो उसका फल बहुत जबरदस्त हो गया। इसलिए ब्राह्मणों का पुण्य करना सोच लो, अनेक पापों के प्रभाव को नष्ट कर देगा। पुण्यों में तो बहुत बल हो गया ना, योग से तो पाप कर्म नष्ट होते ही हैं, लेकिन पुण्यों से भी पाप का प्रभाव ढीला पड़ जाएगा। और पुण्य कर्म करने का ज्ञान केवल हमें है, आ जाते हैं इस पे बाद में। पुण्य लोग तो क्या समझेंगे, किसी को दान कर दिया थोड़ा बहुत, और कुछ मंदिर बनवा दिया, स्कूल खोल दिया, किसी गरीब को मदद कर दी, ऐसे कर भी बहुत रहे हैं कलयुग के अंत में भी। ये अच्छे काम करने वाले लोग भी तो हैं, परंतु कोई हॉस्पिटल बनाता है तो पहले ही सोच लेता है कमाई कितनी होगी इससे, हॉस्पिटल बनाना, होटल्स बनाना, आजकल तो मंदिर भी ऐसे ही बनने लगे कि कमाई कितनी होगी। पुजारी से पहले ही ठेका तय हो जाता है, आधा तुम्हारा आधा मेरा। हमारे पुण्य अलग। अब दूसरी चीज, हम कल्प वृक्ष की जड़ें हैं। बहुत पुराना स्वमान दिया हुआ बाबा का, अब देखो बहुत गहराई से विचार करना, जड़े कहाँ रहती है? जमीन में। दिखती नहीं है, किसी किसी की दिखती है जो बाहर मोटी होती है, पर दिखती नहीं है, मिट्टी में है। गोबर डाला जाता है या खाद डाली जाती है, अंडरग्राउंड है। उनके द्वारा पूरे वृक्ष को भोजन पानी जाता है, ठीक है ना? क्लियर। हम जड़े हैं, हमारे द्वारा पूरे कल्प वृक्ष को भोजन पानी जाता है। सभी बहुत अच्छी तरह इस स्वमान में आ जाएं। हम साधारण नहीं हैं, जितनी हमारी प्योरिटी है उसके वाइब्रेशंस पूरे कल्प वृक्ष में फैल रहे हैं। अब एक चित्र बना लो अपना अपना, हमारे सिर के ऊपर ही जैसे कल्प वृक्ष है, हमारी जो भी स्थिति है उसके वाइब्रेशंस शाखाओं में एक एक पत्ते तक पहुंच रहे हैं। हमारा जो योग है उसका प्रभाव पूरे कल्प वृक्ष में जा रहा है। चाहे हमारे पुण्य कर्म, चाहे हमारी खुशी, खुशी भी बहुत बड़ी चीज है, हमारी शांति, हमारा सभी आत्माओं के लिए मन में प्रेम, बहुत इम्पोर्टेंट चीज, सभी को चेक करना है। हमारे मन में संसार की सभी आत्माओं के लिए एक निस्वार्थ आत्मिक प्रेम है, यमन घृणा भाव से भरा हुआ है। सब अपनी भावनाओं को चेक करें, किसी ने हमें कष्ट दिया है, पूर्व जन्मों में कष्ट दिया है, उसका इफेक्ट भी आ रहा है। एक माता अभी अभी मेरे पास आई थी छोटी लड़की को लेके, कहा ये मेरे से बहुत गुस्सा करती है, इसके सिर पे हाथ रख दो। मैंने कहा अगर मेरे हाथ से गुस्सा चला जाता है तो लाओ अभी रख देता हूँ। छोटी सी लड़की, 5 साल की भी नहीं होगी शायद, कहा बहुत गुस्सा करती है, पूर्व जन्मों का हिसाब लेने आई है ना आत्माएं, बहुत हो रहा है ये सब। स्पष्ट दिखता है कि पूर्व जन्मों का हिसाब लेने आत्माएं आई हैं। तो हम सभी ध्यान दें, सबके लिए प्रेम, बहुत सुंदर स्थिति है। संसार में कोई हमारा शत्रु नहीं। बोलो हो सकता है? हो सकता है, सब करेंगे ये काम, सब हमारे गुड फ्रेंड, सब हमारे अपने, सबका हमें कल्याण करना है, सबको सुखों के वाइब्रेशंस देने हैं, सब हमारे हैं। ये सब फीलिंग्स पूरे कल्प वृक्ष में जाएगी। हमारा ये आत्मिक प्रेम, हमारी ये शुभ भावनाएं अनेक मनुष्यों के मन की घृणा को समाप्त करेगी। ये हमारी स्थिति का महत्व है, सभी ध्यान दें इस पर। हम ये मनसा के द्वारा बहुत बड़ा कार्य करते हैं। जो धारणाएं हम अपनाते हैं उसका इफेक्ट दूर दूर तक जाता है, क्योंकि हम पूर्वज हैं, इष्ट देव देवियां हैं। हम संतुष्ट हुए, अनेक आत्माएं संतुष्ट हो जाएंगी। हम इच्छाओं के पीछे भागने लगे, अनेक भागने लगेंगे, उन्हें लगेगा यही प्राप्ति है जीवन की, इसे तृप्त आत्मा बनना है। तो हमारे सिर के ऊपर ही जैसे कल्प वृक्ष है और हम उसकी पालना कर रहे हैं। पसंद है? ये योग के द्वारा कल्प वृक्ष को सकास देने की विधि भी है। अब जो मैंने आपको कहा जड़े अंडरग्राउंड हैं, फूल और फल सबको दिखते हैं, शोभा होती है पेड़ की, लाल लाल फूल लगे। आजकल यहाँ आबू में गुलाबी रंग के फूल बहुत दिखते हैं, खुशबू नहीं है पर रास्ते में आओ तो एक रौनक दिखाई देती है। फल और फूल बाहर हैं, पालना करने वाले नीचे हैं, मिट्टी में है, गुप्त हैं, हम सब भी गुप्त, दिखावे की इच्छा नहीं। फल लगेंगे दिख रहे तो क्या करेंगे लोग, तोड़ लेंगे ना। इसलिए जिनमें दिखावे की इच्छा होती है वो टूटते रहते हैं। जो गुप्त सेवाएं करते हैं, गुप्त पुरुषार्थ करते हैं, वो सदा स्थिर रहेंगे, पालना करते ही रहेंगे। इसलिए हम जड़े हैं, बाबा बीज है, हम भी कल में हैं, मास्टर बीज हैं, हमें नीचे रहकर पूरा कार्य करना है। इसमें हम, हमारा बल रहता है, हमारे अंदर आत्मिक शक्तियां रहती हैं, और जैसे ही दिखावा करने लगेंगे शक्तियां क्षीण होने लगेंगी। सभी को पुण्य करने हैं, क्योंकि हमारे पुण्य कर्मों का बल संसार को पहुंचेगा। बाबा ने ये बहुत अच्छी बात जब जब मुरलियों में कही, सारी सृष्टि की स्थिति का आधार तुम्हारी स्थिति है। बड़ी गुह्य बात है। प्रकृति की स्थिति का आधार भी तुम्हारी स्थिति है। शुरू से ही हम सुनते आते थे, प्रकृति सत्तो रजो तमो होती है। कहीं भी शास्त्रों में, हमारी फिलोसोफीज में ये वर्णन नहीं है कि आत्माएं भी सतो रजो तमो में आती हैं। अगर किसी को पता हो दुनिया में, फिलोसोफर्स को, विद्वानों को, आत्मा सतो रजो तमो, हम चार बोलते हैं, तो उन्हें ये पता चलेगा कि हमारा पहला स्वरूप देवी देवता का है और हमारे स्वरूप से प्रकृति का स्वरूप बनता है। हम सतो प्रधान हैं तो प्रकृति भी सतो प्रधान है। प्रकृति तो जड़ है, उसमें स्वयं परिवर्तन नहीं आता। अब भी प्रकृति को कौन बिगाड़ रहा है, मनुष्य बिगाड़ रहे हैं ना। पॉल्यूशन, गंदा धुआं, गंदी गैस से जमीन में गंदा पानी, मनुष्य की स्थिति पर निर्भर है ना। तो हमें इसको पवित्र करना है, तो पुण्य कर्मों पर बहुत ध्यान देना है। आपके पुण्य, अब मैं आपसे बात करूंगा, जिनके घरों में समस्याएं बहुत हैं वो पुण्य कर्म करें, समस्याएं खत्म हो जाएंगी। घरों में संघर्ष बढ़ता जाता है। हमारे यहाँ जूरिस्ट आए हुए जज, बहुत अच्छा ग्रुप है, ऐसा ग्रुप पहले कभी नहीं आया था। 150 तो जज और मैजिस्ट्रेट हैं, 150, 400 वकील हैं, बहुत सुंदर ग्रुप है। उनमें कई मैजिस्ट्रेट और जज तो ज्ञान में ही आ गए हैं, कोई 2 मास से, कोई 1 मास से, कोई 3 मास से। तो एक आज मुझे बता रहे थे कि इतने केस आने लगे डिवोर्स के, कहा किसी किसी का तो एक दिन पहले शादी हुई है, अगले दिन केस आ गया, तलाक चाहिए। एक का बहुत अच्छा वर्णन किया उसने, आईएएस ऑफिसर, कलेक्टर, पत्नी भी कलेक्टर, शादी हुई, एक ही दिन के बाद केस दर्ज हो गया, तलाक चाहिए। केस चला कितने दिन, आप हैरान होंगे, वो खुद कलेक्टर, उनका तलाक का केस चला 15 साल। वो बता रहा था, कहता जब फैसला हुआ तलाक का, तो वो कहता कलेक्टर अब कमिश्नर हो गया, ये जजों ने मेरा जीवन खराब कर दिया। कहा हमने कहा पर केस तो तुमने दर्ज किया था ना, एक दिन में तलाक हो रहा, दोनों प्यार से अलग हो जाते, बात खत्म हो जाती, 15 साल टेंशन झेली। कितनी टेंशन होती है केसेज की, नींद भी नहीं आती बेचारों को, खुद बड़ी पोस्ट पर, उनको भी न्याय करना रोज, कलेक्टर को भी तो निर्णय लेने होते हैं ना बहुत सारे, और उनके केस फाइल हो गए। तो घरों की स्थिति को अच्छा बनाने के लिए पुण्य कर्म करेंगी। मैं माताओं को कह रहा हूं, पहले माताएं जिम्मेदार हैं बहुत चीजों की। पुण्य किसे किसे कहते हैं जरा विचार कर लें, बोलो। अब 15 मिनट में हम पुण्यों की चर्चा करेंगे। सबसे पहला पुण्य हाँ सब ठीक है जो आपने बोला, सबसे बड़ा पुण्य बाबा का परिचय देना, ज्ञान देना, खुशी देना, ये सब। लेकिन प्रैक्टिकल जो रोज के जीवन में सबके आएगा, दूसरों को सुख देना, पवित्र बनना और दूसरों को बनाना बहुत बड़ा पुण्य है। योग लगाना तो सबसे बड़ा पुण्य है। किसी को योगी बना देना बहुत बड़ा पुण्य है। मुझे एक बात याद आ गई अव्यक्त मुरली की, अंत में रिजल्ट में नंबर 3 बातों के आधार से मिलेंगे। ध्यान से सुनेंगे सभी, जो श्रेष्ठ पुरुषार्थी हैं, अच्छा चिंतन करते हैं, 3 बातों के आधार से नंबर मिलेंगे। पहला था कितनों को योग्य बनाया, सेवाओं का तो बाबा नाम ही नहीं लिया, कितनों को योग्य बनाया, बहुत बड़ी चीज है ना। योग्य व्यक्ति तो, योग्य व्यक्ति को तो हर एक चाहता है। आपको सेंटर में बहने भी चाहिए तो कहेंगे बहुत योग्य बहन भेज दो। हर डिपार्टमेंट में लोग ढूंढेंगे योग्य व्यक्तियों को, लेकिन योग्य बनाने वाले बहुत कम हैं। चिंतन कर लेना इस पे, कितनों को योग्य बनाया। आपके बच्चे की शादी होगी, बहू कैसी भी आई, आप उसको बहुत योग्य बना सकते हैं। लेकिन मनुष्य कामना करता है, बनाता नहीं है। बने बनाए आए हमारे पास, ऐसा तो हो नहीं सकता। कलयुग के अंत में क्या अच्छे लोग ही मिलेंगे हमें? मिलेंगे, फिर कलयुग का अंत क्यों हो। हमें दूसरों को योग्य बनाना है। दूसरी बात थी पूरा जीवन कितना निर्विघ्न होकर रहे। कईयों के जीवन में बहुत विघ्न है, कई विघ्न डालते हैं, दोनों चीजों से परे। अपना जीवन भी जीने का ऐसा ढंग हो कि विघ्न कम से कम हो, और विघ्न तो डाले ही नहीं। कई लोग तो भगवान के कार्य में भी विघ्न डालते हैं, बाबा के बच्चे, बाहर के डाले तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अपने बच्चे जब बाबा के कार्यों में विघ्न डालते हैं तो भगवान की नजर टेढ़ी तो नहीं होती, पर विघ्न डालने वालों को सजा तो बहुत मिलेगी ना। बाबा तो कभी गुस्सा करता ही नहीं ना, शिव बाबा क्या करता है। बाबा की मुरली में आया था, आप में से किसी ने कैच किया हो, मुझे बड़ा मजा आया वो सुन के। किसी ने बाबा से पूछ लिया साकार में कि जब सोमनाथ में आपका मंदिर लूटा गया आपको गुस्सा नहीं आया। बाबा ने कहा नहीं। बस इतना ही था उसमें, तो मैंने सोचा भगवान को तो गुस्सा करना आता ही नहीं, ठीक है या नहीं। भगवान को गुस्सा करना कहाँ आता है, वो तो प्यार का सागर है, उसको तो प्यार देना आता है केवल। गुस्सा करने का काम तो वो धर्मराज को दे देगा कि ये काम तुम्हारा है, वो भी क्या गुस्सा करेगा, सबका हिसाब किताब चुक तू होगा। सबको सुख देना। तीसरी बात थी पूरा ब्राह्मण जीवन कितने शक्तिशाली बनकर रहे। माया से युद्ध है ना, समस्याएं भी हैं, परिस्थितियां भी हैं, और शक्तिशाली आत्मा का लक्षण है अचल अडोल स्थिति। स्थिति को डोलाने के लिए बहुत बातें हैं, हर एक के जीवन में बहुत हैं। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसको अनेक चीजों का सामना न करना पड़े, जिसको ग्लानि न सुननी पड़े, जिसको परेशान करने वाले लोग न मिलें, जिसके आगे विघ्न डालने वाले खड़े न हों। ऐसा कभी हो सकता है? सबकी परीक्षा लेने वाले दो चार तैयार हैं, है या नहीं? अचल अडोल होना ये शक्तिशाली और ज्ञानी आत्मा की निशानी है। तो हम सभी पहला पुण्य करेंगे, सबको सुख देना। और सुख सबसे ज्यादा किससे दिया जाता है? वाणी से, जिसमें कुछ खर्च नहीं है, बोल के द्वारा। देखिए, बोल ही तो जबरदस्त चीज है। किसी के दिल को छलनी कर दे, किसी की खुशी गुम कर दे, किसी की शांति छीन ले, किसी को निराश कर दे या उड़ा दे, बोल। और जिसने बोल बोलने सीख लिए वो महान। बोल तो सभी रहे हैं, महान कैसे हो हमारे बोल? सुख देने वाले, और कैसे उठाने वाले, और कैसे इस देव देवियों के बोल हल्का करने वाले। ये बहुत अच्छी बात, सबसे अच्छी बात वरदानी बोल। दूसरों के दुख हरने लगे ऐसे बोल। देखो, कोई डॉक्टर है, उसके पास पेशेंट आ गया, कैंसर का पेशेंट आ गया। डॉक्टर को पता है 3 मास से ज्यादा नहीं जिएंगे, फिर भी डॉक्टर बताता नहीं। बहुत कम है जो बता देते, बता भी देते हैं, पर अधिकतर डॉक्टर कहेंगे नहीं, ठीक हो जाओगे। हल्का करते हैं ना, हल्का करना एक दूसरे को। हमारे बोल यदि दूसरों को भारी कर रहे हैं तो हम हल्के कभी नहीं रह पाएंगे। बोल पर सभी बहुत ध्यान दें घरों में। इस बोल ने बड़े महाभारत शुरू किए हुए हैं दुनिया में। बोल, घर घर में बोल, संघर्षों के कारण। अहंकार अनेक समस्याओं का कारण। इसलिए सभी को एक संकल्प कर लेना चाहिए, क्रोध और अभिमान योगियों के महान शत्रु हैं। डाउन करें इन्हें, चित्त को शीतल करें। जिस घर में क्रोध की अग्नि जलती हो क्या होगा? मां बाबा तो कहते थे पानी के मटके भी सूख जाएंगे, इतनी गर्मी होगी। और वैसे भी सभी लड़ेंगे तो कोई पानी भरेगा भी नहीं, सूख जाएंगे मटके वैसे भी। वो कहेंगे तुम भरो, वो सोचेगा तुम भरो। गर्मी है इसमें, आत्मा को नष्ट, आत्मा की खुशी शांति सुख सब नष्ट कर दी, मैंने आत्मा ही नष्ट कर दी। तो हम पहला पुण्य करेंगे सुख देना बोल से, अपनी सेवाओं से सुख देना। ये बहुत अच्छी बात। आप सब जो यहाँ यज्ञ सेवा में आए हैं, ये भी बहुत बड़ा पुण्य है। कौन कौन बैठे सेवाधारी, ये भी बहुत बड़ा पुण्य है। पता है क्या होता है इससे? नहीं, मैं वो बात बता रहा हूं जिसका आपको पता नहीं। बाबा की नजर आप पर पड़ने लगती है, आपने उसके यज्ञ में सहयोग दिया। चाहे आप कैसे भी सहयोग दें, तन मन धन से भगवान की नजर को खींचते हैं, आकर्षित होती है उसकी नजर उन आत्माओं की ओर जो उसके कार्यों में मदद कर रहे हैं। किसी ने एक बहुत अच्छी फैक्ट्री बनाई हो और 4 लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हो, मालिक की नजर रहेगी या नहीं उन पर? उनको बहुत कुछ देंगे। बाबा भी उन आत्माओं पर बलिहार रहता है जो उसके कार्यों में बहुत मदद करते हैं। दूसरा पुण्य बोलो, अब प्रैक्टिकल पुण्य की बात करेंगे। लिस्ट तो लंबी निकाली जा सकती है, लेकिन वो जो हम प्रैक्टिकल करें, दूसरों को मदद करना और उसमें भी दूसरों की स्थिति को ऊंचा उठाने में मदद करना, ये और बहुत बड़ी चीज है। किसके जीवन में कोई डिस्टर्बेंस हो गया हो, कोई इम्प्योरिटी आ गई हो, कोई निराशा के भाव आ गए हो, निश्चय टूटता जा रहा हो, उनको मदद करना। परिस्थिति आ गई हो, बाबा को छोड़ने का प्लान बना लिया हो, ऐसा प्लान भी आजकल बहुत बना रहे हैं, पहले उसे मिलने का प्लान करते थे, अब कई लोग छोड़ने का प्लानिंग करते हैं। ऐसी आत्माओं को उठाना ये बहुत बड़ा पुण्य होगा, क्योंकि परीक्षाओं के दौर से सभी गुजर रहे हैं। पढ़ाई पढ़ी है तो परीक्षा देनी चाहिए या नहीं? परीक्षा सबको देनी ही पड़ेगी। ऐसा तो नहीं पढ़ाई बहुत ऊंची पर परीक्षा ना हो, चलेगा काम? परीक्षा तो होगी, इसलिए एक दूसरे को मदद करना ये दूसरा बहुत बड़ा पुण्य। तीसरा बहुत बड़ा पुण्य स्वयं पवित्र बनना और दूसरों को बनाना, मदद करना। कईयों ने किया है, खुद ज्ञान में चलते थे, बच्चे भी चलते थे, पर माँ ने जिद कर ली बहू तो चाहिए, शादी करा दी बच्चों की। पुण्य हुआ या पाप? सब माताएं क्या कहती हैं? माताएं बोले पाप हुआ ये, बहू ऐसी आई माँ से बदला लेने, सास से, अब सास पछता रही है बहुत गलती कर दी, ऐसे ही ठीक थे हम, घर में सुख शांति थी, सब मलिया मेट हो गया, लेकिन अब तो तीर निकल गया ना कमान से निकल गया तीर, अब तो वो लगेगा ही। तो बहुत बड़ा पुण्य है पवित्र बनना और बनाना, और जिसमें थोड़े भी पवित्रता के संस्कार हों उनको मदद करना, जगाना। पवित्रता बहुत बड़ी चीज है, संसार के लिए वरदान है, भारत देश की महानता है, हमारी कल्चर की यही सबसे बड़ी महानता है। अब तक भी भारत में ही कुछ लोग पवित्र हैं, ब्राह्मणों के अलावा भी कुछ लोग भारत में ही केवल पवित्र हैं, संसार के किसी देश में नहीं। वहां तो ब्रह्मचर्य सब डिक्शनरियों से निकाल दिया है, उसका कोई अर्थ नहीं जानते। भारत एक महान देश, हम सभी पुण्य करते चले। बहुत बड़ा पुण्य किसी को भगवान से मिलाना, बहुत बड़ा पुण्य किसी को सत्य मार्ग दिखा देना, वो भी एक कला है। ज्ञान किसको किस तरह देना है वो बहुत अच्छी तरह जानने का विषय है। सबको सीधा सीधा ज्ञान देना नहीं स्वीकार्य होता है, अनाउंस कर देते हैं इस लाउड स्पीकर पे, भगवान आया है, अब नहीं जागोगे तो पछताओगे। लोग कहते हैं ये इनका काम है, ऐसे ही बोलते रहते हैं लोग, ऐसे भला कहीं भगवान आता है क्या? कह के बात खत्म कर दी। हर एक को ज्ञान देने का तरीका अलग। धन के बारे में बहुत अच्छी बात बाबा ने आज कही है, सभी इस पे ध्यान देंगे। अगर हम कह देते हैं ये तन मन धन तेरा है, तो उसके द्वारा दिया गया धन सत्कर्मों में ही लगे, वो अमानत हो गई, उसमें गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, नहीं तो वो भी पाप के खाते में चला जाता है। अन्यथा कहना ही नहीं चाहिए तन मन धन सब तेरा, कहना चाहिए तन तेरा बाकी धन मेरा, ठीक है? चलेगा? नहीं चलेगा। तन मन धन सब तेरा, बहुत सुख मिलेगा। आरती तो केवल गाने के लिए, घर आके उल्टा कर देते हैं, तन मन धन सब मेरा। मंदिर में जाके आरती गाएंगे, तन मन धन सब तेरा, घर में आके मेरा। ये तो बहुत सुख संभावना की बात है ना, मन से फील करना। तो मैं एक छोटी सी विधि बता देता हूँ, टाइम हो गया है। धन आपके पास आए, बाबा के सामने रख दो, इसे स्वीकार करो। कोई भी चीज, माताएं सब्जी भी लाए ना बाजार से, बाबा के आगे रख दो, इसे पहले आप स्वीकार करो। कपड़े लाओ, बाबा के आगे रख दो, आप इसे स्वीकार करो। तो बाबा से जुड़े भी रहेंगे, उसका बल भी मिलता रहेगा, उसकी दृष्टि भी हम पर आती रहेगी। तो याद रखना, कल सवेरे ऐसे ही योग करना, हमारे सिर के ऊपर ही कल्प वृक्ष है और बाबा के सारे वाइब्रेशंस पूरे कल्प वृक्ष में फैल रहे हैं। ओम शांति।
प्रभु का ध्यान।